रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अमेरिका, चीन, जापान लगायत 11 देश के राजदूत फिरता बुलाने के लिए सरकार की निर्णय, कार्तिक 20 गते के भीतर आना होगा वापस। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के संबंध में राजनीतिक दल, सरकार और निर्वाचन बीच हुआ विचार विमर्श। सरकार ने निर्वाचन के वातावरण बनाने के लिए दलों के प्रतिनिधियों को दिया जोर। आंदोलनरत नर्सों का समस्या समाधान करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का निर्देश। और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई सड़क हादसा में 15 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने अमेरिका, चीन, जापान सहित 11 देशों के राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय किया है। सिंहदरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पिछली सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न 11 देशों के राजदूतों को कार्तिक 20 तक नेपाल लौट आने का आदेश देने का निर्णय किया गया है। यह जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने दी। सरकार द्वारा वापस बुलाए गए राजदूतों में डॉ कृष्ण प्रसाद ओली चीन, लोकदर्शन रेग्मी अमेरिका, चंद्र घिमिरे ब्रिटेन, नेत्र तिमल सिन्हा मलेशिया, सैल रूपा खेती जर्मनी, धन प्रसाद पंडित इजरायल, जंग प्रसाद चौहान रूस, सनील नेपाल स्पेन, रमेश चंद्र पौड़ेल कत्तर, नरेश विक्रम ढकाल सऊदी अरब और दुर्गा बहादुर सुवेदी जापान शामिल है। इसी तरह मंत्रिपरिषद की बैठक में नेपाल विद्युत प्राधिकरण और भारत की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की संयुक्त निवेश में इनरुआ पूर्णिया और दोधारा बरेली 400 केवी अंतर्राष्ट्रीय विद्युत प्रसारण लाइन की दो संयुक्त कंपनियां नेपाल और भारत दोनों की भूमि पर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। संचार मंत्री खरेल ने बताया कि इन दोनों संयुक्त कंपनियों में नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1 अरब और 2 अरब रुपए की पूंजी निवेश करने की स्वीकृति प्रदान करने का भी निर्णय किया गया है। इसी तरह विश्व बैंक से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन परियोजना के लिए प्राप्त होने वाली 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता स्वीकार करने और नेपाल भारत के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता संधि से संबंधित समझौते को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी संचार मंत्री खरेल ने दी। इसी तरह संचार मंत्री खरेल ने कीर्तिपुर क्रिकेट स्टेडियम आयोजना की मास्टर प्लान स्वीकृत करने और मास्टर प्लान के अनुसार शेष कार्यों की बोलपत्र आमंत्रित कर खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करने का भी निर्णय लिए जाने की जानकारी दी। आगामी फागुन 21 गते के लिए तय किए गए प्रतिनिधि सभा सदस्य का निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप में संपन्न कराने के लिए सरकार निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों के बीच त्रिपक्षीय संवाद करने के लिए दलों ने जोर दिया है। आने वाले निर्वाचन के विषय पर आज आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ किए गए विचार विमर्श में सहभागियों ने कहा कि सरकार को दलों के साथ अंतर संवाद करने और निर्वाचन के पूर्व वातावरण तैयार करना चाहिए। विचार विमर्श में सहभागी नेपाली कांग्रेस के नेता मीन विश्वकर्मा ने कहा कि जेएनजी आंदोलन के मर्म को आत्मसात करते हुए प्रतिशोध की भावना हटाकर निर्वाचन का वातावरण बनाना चाहिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के उपाध्यक्ष गुरु प्रसाद बराल ने कहा कि राजनीतिक दलों के नेता को स्थान हद तय करना, वीजा रोकना और जुलूस सभा नहीं करने देना जैसे सरकार का निर्णय निर्वाचन के वातावरण के लिए बाधक है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा कि वर्तमान सरकार निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए बनी है। आज जिला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने फागुन 21 को निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराएगी। गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि निर्वाचन के वातावरण बनाने के लिए सरकार बालू पक्षों को संवाद में आने का आग्रह भी किया। नेपाली कांग्रेस की केन्द्रीय कार्य समिति की आज की बैठक में बोलने वाले नेताओं ने सुरक्षा की गारंटी सहित चुनाव का माहौल बनाने के लिए सरकार की भूमिका की आवश्यकता जताई। बैठक में बोलने वाले नेताओं ने आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास न हो पाने, सुरक्षा निकायों का मनोबल न बढ़ पाने और सरकार की अब तक की गतिविधियों से चुनाव का अनुकूल माहौल बनने के बजाय प्रतिशोध का रास्ता अपनाए जाने के संकेत मिलने की धारणा रखी। यह जानकारी नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ प्रकाश शरण महत ने दी। बैठक में बोलने वाले नेताओं ने जेएनजी आंदोलन के दौरान पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा पर हुए संघातिक हमले की निंदा के साथ की है। आंदोलन की घटना की जड़ से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने यह धारणा रखी कि संसद की बहाली या चुनाव किसी भी स्थिति में नेपाली कांग्रेस को खुला रवैया अपनाना चाहिए। इसी आश्विन 28 से पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सानेपा में जारी बैठक में वक्ताओं ने पार्टी के अधिवेशन के लिए एक स्पष्ट कार्यसूची के साथ आगे बढ़ने की भी मांग की। साथ ही बैठक की शुरुआत में नेपाली कांग्रेस के कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड़का ने विशेष महाधिवेशन के लिए एकत्र हस्ताक्षरों के बारे में बैठक को अवगत कराया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले की जारी केन्द्रीय समिति की बैठक में नेताओं ने संविधान को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रतिनिधि सभा की पुनर्स्थापना को ही उपयुक्त माध्यम बताया है। बैठक में संविधान और जनअधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिनिधि सभा की पुनर्स्थापना करके ही आगे बढ़ना चाहिए, यह बात उठी। लेकिन एमाले ने यह स्पष्ट किया कि वह चुनाव में भाग लेना नहीं चाहता। यह जानकारी बैठक के बाद एमाले के प्रचार विभाग प्रमुख राजेंद्र गौतम ने दी। बैठक में नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा केंद्रित नहीं हुई और प्रचार विभाग प्रमुख गौतम ने बताया कि इस विषय पर पार्टी का आगामी महाधिवेशन ही निर्णय करेगा। नेकपा एमाले की केंद्रीय समिति की आज की बैठक में 134 लोगों ने अपने विचार रखे और एमाले ने बताया है कि कल भी बैठक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आंदोलनरत नर्सों का तत्काल समस्या समाधान करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश किया है। प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री के जिम्मेवारी संभाले कार्की ने आज स्वास्थ्य सचिव डॉ विकास देवकोटा को बुलाकर समस्या समाधान के लिए आवश्यक कदम बढ़ाने और प्रगति के बारे में नियमित जानकारी लेने का निर्देश किया है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि अदालत का सेवा एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। बता दें कि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के संचालक समिति और सर्वोच्च अदालत के प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त बैठक में उन्होंने ये बात कही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद सोनार ने कहा कि जेएनजी आंदोलन द्वारा उठाए गए सुशासन, समृद्धि और जनता को सरल सेवा प्रवास कराना का मांग संबोधन करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण के बाद आज संचार कर्मियों के साथ जनकपुर धाम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि संघीयता को मजबूत बनाने के लिए गठबंधन की सरकार बनी है। झापा की गौरादह नगरपालिका 9 स्थित सिसने खोला में मछली मारने के दौरान डूबने से आज 3 बच्चियों की मौत हो गई, ये जानकारी पुलिस ने दी। मरने वालों में स्थानीय अंजू मगर की 2 बेटियां 7 वर्षीय सुषमा, 9 वर्षीय स्वीकृति और निर्मला परियार की 11 वर्षीय बेटी रोशी शामिल है। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ने महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 ख से निर्वाचित मध्य प्रदेश सभा सदस्य सरोज कुमार सिंह सहित 16 व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी मामले में मुकदमा दर्ज किया है। आयोग का आरोप है कि सिंह ने विभिन्न उपभोक्ता समितियों का गठन करके उन समितियों के खाते में जमा दाखिल हुई राशि अपचलन किया। यह कार्य भ्रष्टाचार निवारण एन 2059 की धारा 3 के तहत एक दंडनीय अपराध है। इस आधार पर आयोग ने आज विशेष अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए हैं। बुधवार रात मालाकंड जिले में एक मोड़ लेते समय ट्रक के पलटने से यह दुर्घटना हुई है। मृतकों और घायलों में स्वात जिले की ओर जा रहे एक खाना बदोश परिवार के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है। बचाव दलों को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर बचाव कार्य किया। अधिकारियों के अनुसार कुछ घायलों की हालात गंभीर बनी हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका, चीन, जापान लगायत 11 देश के राजदूत फिरता बुलाने की सरकार के निर्णय, कार्तिक 20 गते के भीतर आना होगा वापस। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के संबंध में राजनीतिक दल, सरकार और निर्वाचन आयोग बीच हुआ विचार विमर्श। सरकार ने निर्वाचन के वातावरण बनाने के लिए दलों के प्रतिनिधियों को किया जोड़। आंदोलनरत नर्सों का समस्या तत्काल समाधान करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का निर्देश। और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।